بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اس کتاب کا پارٹ نمبر 17 ہے. آج ہم کتاب مطالعہ پاکستان لازمی ریکارڈ کر رہے ہیں برائے BA BSc BCOM جدید نصاب اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے مطابق. اس کتاب کے مصنف محمد نعیم طاہر PhD ریسرچ اسکالر ہیں. یہ کتاب آپ کی خدمت میں اسوپا آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. یہ صفحہ نمبر 183 ہے. آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 17. موجودہ دور میں جنگلات انتہائی ضروری حیثیت اختیار کر گئے ہیں. نمبر 4 چراگاہیں. قدرتی طور پر پائی جانے والی چراگاہیں ملک کے کسانوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہیں. وہاں پر کسان اپنے جانور پالتے ہیں. ان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ان کی مناسب دیکھ بھال کی جائے. نمبر 5 موسمی حالات. جنگلات ملک کے موسمی حالات میں بڑے معاون و مددگار ثابت ہوتے ہیں. جنگلات تیز آندھیوں، طوفانوں اور زیادہ بارشوں کی مدد کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کو کافی حد تک کم کرنے میں مدد دیتے ہیں. نمبر 2 حیوانات. چند اہم حیوانات کا تعارف درج ذیل ہے. نمبر 1 بھینس. ملک کا سب سے اہم جانور بھینس ہے، جس سے نہ صرف غذائی ضروریات پوری ہوتی ہیں بلکہ اس سے چمڑا بھی حاصل کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اس جانور کی مدد سے کاشتکاری اور بارورداری کا کام بھی لیا جاتا ہے. بھینس کا دودھ باقی تمام جانوروں کے دودھ سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے. بھینسوں کی سب سے خاص نسل نیلی بار ضلع ساہیوال میں کنڈی نسل سمجھی جاتی ہے. ان جانوروں کو پالنے کے لیے نہ صرف نجی بلکہ سرکاری سطح پر بھی فارم بنائے گئے ہیں، جن کی مدد سے ملک کی بڑی ترقی ہو رہی ہے. نمبر 2 گائے. پاکستان میں گائے کی اعلیٰ نسلیں پائی جاتی ہیں جو زیادہ دودھ دینے میں بہت مشہور ہیں. ان میں نیلی راوی اور سرخ رنگ کی نسلیں بڑی اہم ہیں. نجی سطح پر تقریباً پورے ملک میں چھوٹے بڑے فارم ہیں جہاں جانوروں کو پالا جاتا ہے. اس کے علاوہ سرکاری سطح پر اوکاڑا، لاہور، راولپنڈی اور پشاور وغیرہ میں بھی فارم قائم کیے جاتے ہیں تاکہ ملک کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے. نمبر 3 اونٹ. اونٹ کو ریگستانی جہاز کہتے ہیں. یہ زیادہ تر ریگستانی علاقوں میں پایا جاتا ہے. اس سے دودھ اور گوشت حاصل کرتے ہیں. اونٹ کو بارورداری کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ بعض علاقوں میں اس کی مدد سے کاشتکاری بھی کی جاتی ہے. زیادہ تر چولستان، تھل، تھرپارکر اور مکران کے علاقوں میں پایا جاتا ہے. نمبر 4 بکریاں. بکریاں تقریباً پورے ملک میں پائی جاتی ہیں. ان کی بہت سی اقسام ہیں. بکریوں کی مدد سے ہم دودھ، گوشت، کھالیں اور اون حاصل کرتے ہیں. بکریوں کی مختلف اقسام میدانی علاقوں میں پائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ بہت سی اقسام پہاڑی علاقوں میں بھی پائی جاتی ہیں. نمبر 5 بھیڑیں. بھیڑیں زیادہ تر گوشت اور اون حاصل کرنے کے لیے پالی جاتی ہیں. ان کی کھالوں کو بھی استعمال میں لایا جاتا ہے. بھیڑوں کی تعداد اور دیگر ممالک کی نسبت پاکستان میں بہت کم ہے. یہ زیادہ تر خشک علاقوں میں پائی جاتی ہیں، مثلا چولستان، تھل، تھرپارکر وغیرہ. نمبر 6 گھوڑا، گدھا اور خچر. یہ تینوں جانور سواری اور باربرداری کے لیے پالے جاتے ہیں. یہ جانور تانگے، بگھیوں اور چھوٹی گاڑیوں کو کھینچنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. باربرداری کے حوالے سے یہ جانور دیہاتوں کے علاوہ شہروں میں بھی اہمیت رکھتے ہیں. ان جانوروں کو سواری کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. نمبر 7 مرغ. مرغیوں کو پالنا مرغ بانی کہلاتا ہے. مرغیوں سے ہم گوشت اور انڈے حاصل کرتے ہیں. پالتو جانوروں میں سب سے زیادہ مرغیاں پالی جاتی ہیں. شہروں کے علاوہ دیہات میں بھی پولٹری فارم قائم ہیں جو ملک کی ضروریات کو پورا کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں. جانوروں کے فوائد. جانوروں سے نہ صرف ملک کی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے بلکہ ان کی مدد سے بہت سا زر مبادلہ بھی کمایا جا سکتا ہے. جانوروں سے حاصل ہونے والے اہم فوائد درج ذیل ہیں. نمبر 1 اون کی مصنوعات. اون ملک کے صنعتی شعبے میں بڑی اہمیت رکھتا ہے. اس سے بے شمار مصنوعات تیار کی جاتی ہیں، مثلا کپڑا، کمبل، قالین اور شالے وغیرہ. اس کے علاوہ اون بہت سے ملکوں کو برآمد بھی کی جاتی ہے. اس طرح لائیو اسٹاک سے حاصل کردہ اون سے ملک کی معیشت کو بڑا فائدہ حاصل ہو رہا ہے. نمبر 2 گوشت. پاکستان میں زیادہ تر مرغی کے گوشت کو حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے पैकेटों में बंद करके बहुत से मुल्कों को बरामद किया जाता है। नंबर 3, चमड़े की मसनूआत, जानवरों से खालें हासिल की जाती हैं। ये खालें सनअती शोबे में खाम माल की हैसियत रखती हैं। सनअती शोबा इन खालों की मदद से चमड़ा तैयार करता है जो बरामद किया जाता है। इसके अलावा इस चमड़े की मदद से बहुत सी अशिया भी तैयार की जाती हैं, मसलन जैकेट्स, जूते, सूटकेस और मशीनों के बेल्ट वगैरह। चमड़े की मदद से तैयार करदा इन अशिया को बरामद भी किया जाता है। नंबर 3, मयारी पानी। जमीन के 70% हिस्से पर पानी पाया जाता है। जमीन के 30% खुश्क हिस्से पर पानी दरियाओं, झीलों, नहरों और आबशारों की शक्ल में नजर आता है। पानी को सफाई, पाकिजगी और गजा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मौजूदा दौर में सबसे ज्यादा पानी कारखानों में इस्तेमाल होता है। पानी का हर कतरा जिसे हम इस्तेमाल करते हैं वापस समंदरों का रुख कर लेता है। जमीन पर मौजूद बाज इलाकों में पानी की किल्लत होती है और बाज हमेशा पानी में घिरे रहते हैं। पानी और इंसानी जिंदगी। एक इंसान को अगर खुराक न मिले तो वो कई रोज तक सिर्फ पानी पीकर जिंदा रह सकता है, जबकि पानी के बगैर जिंदा रहना नामुमकिन हो जाता है। एक बालिग शख्स रोजाना तकरीबन 2,900 मिलीलीटर पानी खारिज करता है। अगर जिस्म से इजाफी पानी के अलावा जरा सा पानी भी खारिज हो जाए तो हमारी जिल्द सिकुड़ जाती है। इसके अलावा जायद पानी के अखराज से इंसानी जिंदगी को खतरा लाहक हो सकता है। आलूदगी एक जदीद मसला है जो तरक्की याफ्ता माशरों में तेजी से फैल रहा है। आलूदगी एक ऐसा मसला है जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान के सांस को भारी कर रहा है, जिससे इंसान का निजाम तनफ्फुस मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहा है। आलूदगी फितरी माहौल के खिलाफ है और फितरी माहौल की तखरीब कारी से पैदा होती है। आलूदगी के जराए। आलूदगी में धुआं, मिट्टी के जर्रात, गैस के असरात और शोर व गूंगा शामिल हैं। आलूदगी में हवा नाकिस हो जाती है जिससे निजाम तनफ्फुस बिगड़ जाता है। ऑक्सीजन की कमी वाकई हो जाती है जिससे फेफड़ों में खून पर जो कीमियाई अमल होता है उस अमल में कमी आ जाती है। हरारत कम पैदा होती है जिससे साफ खून के पैदा होने की शरह गिर जाती है और हरारत की कमी की वजह से इंसान नजला, खांसी और जुकाम में मुब्तला हो जाता है। मिट्टी के जर्रात, मोटरों का धुआं सांस के साथ जब गले से गुजरता है तो गला खराब हो जाता है और गले के अमराज पैदा हो जाते हैं। जदीद तहकीक से साबित हुआ है कि कैंसर की एक किस्म आलूदगी से पैदा होती है। शहरी इलाकों में आलूदगी। आलूदगी शहरी इलाकों में तेजी से फैल रही है क्योंकि इन इलाकों में मोटर गाड़ियों की तादाद तेजी से बढ़ रही है, जिनसे धुआं और ऐसी गैसें पैदा होती हैं जो इंसानी सेहत के खिलाफ हैं और फेफड़ों में दाखिल होकर हरारत और फेफड़ों की कारकर्दगी को मुतासर करती हैं। आलूदगी न सिर्फ धुआं और मिट्टी के जर्रात से पैदा होती है बल्कि मोटर गाड़ियों के शोर भी इससे इसमें इजाफा करता है, क्योंकि इंसानी सुकून बर्बाद होता है, परेशानी बढ़ती है, गैर जरूरी सोच में इजाफा होता है, यानी इंसानी सेहत पर बुरे असरात मुरतब करता है। ये शोर एक मुस्तकिल चोट है जो कान के पर्दों पर पड़ती रहती है और ये शहरी जिंदगी का एक खासा है। देही इलाकों में आलूदगी। देही इलाकों में भी कीड़े मार अद्वियात की जहरीली हवा पूरे इलाके को अपनी लपेट में लिए लेती है और तकरीबन 72 घंटों तक पूरा इलाका ताफुन में मुब्तला रहता है। इसके जहरीले जर्रात सांस के जरिए इंसानी फेफड़ों में दाखिल हो जाते हैं। इसके जहरीले असरात इन इलाकों के काश्तकारों पर पड़ते हैं। कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल तकरीबन तमाम फसलों, खासतौर पर कपास की फसल पर ज्यादा होता है, जबकि ये फसलें तकरीबन तमाम इलाकों पर फैली होती हैं। इस तरह देही आबादी भी आलूदगी से महफूज नहीं है। मशीनी काश्त से भी आलूदगी में इजाफा होता है। सनअती आलूदगी। सनअती तरक्की मुल्क की मईशत की तरक्की में बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है। कारखानों का धुआं और इंजनों की आवाज और मशीनों से होने वाले जर्रात इंसानी सेहत के लिए सख्त मुजिर हैं, जो हवा में फैल जाते हैं और कुदरती हवा को मुकद्दर करते हैं। तेज सांस के साथ इंसानी फेफड़ों में बराह रास्त दाखिल हो जाते हैं। इस तरह आलूदगी पैदा करने में कारखानों का ज्यादा हिस्सा है। पाकिस्तान में फैसलाबाद, गुजरावाला, कराची, मुल्तान, हैदराबाद वगैरह वो मखसूस इलाके हैं जहाँ कारखानों ने आलूदगी को मुसलसल कायम कर दिया है। अगर चंद इलाकों के रहने वाले लोग इस मसले का एहसास नहीं करते क्योंकि कारखानों के मफादात का पहलू गालिब है, बस आलूदगी पाकिस्तानी माशरे में खास तौर पर सनअती इलाकों में एक अहम मसला है। माहौलियाती आलूदगी। साइंसी इजादात ने इंसानी जिंदगी में बेपनाह सहूलियात पैदा कर दी हैं। इन हैरत अंगेज इजादात ने इंसान के फितरी माहौल को खराब कर दिया है। माहौलियाती मसाइल जिनमें आलूदगी का मसला सरे फहरिस्त है, जो आलमी सतह पर तवज्जो का मरकज बना हुआ है। माहरीन इस मसले पर काबू पाने के लिए सरतोड़ कोशिशों में मसरूफ अमल हैं। माहौलियाती आलूदगी एक बैन अवी मसला है, जिसके मनफी असरा पूरे कुर्रे अर्ज पर महसूस किए जा रहे हैं। माहौलियाती आलूदगी की अकसाम। माहौल की बढ़ती हुई आलूदगी मुस्तकबिल में तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। माहरीन माहौलियात ने माहौलियाती आलूदगी की दर्ज झेल अकसाम की निशानदेही की है। नंबर 1, आबी आलूदगी। आबी आलूदगी से मुराद पानी के कुदरती अनासर में मुदरे सेहत अनासर का शामिल होना है। फैक्ट्रियों के फाजिल कीमियाई मादे, समंदरों में चलने वाले माल बरदार जहाज, वाटर सप्लाई की शिकस्ता नालियां आबी आलूदगी की बुनियादी वजूहात हैं। फैक्ट्रियों और कारखानों से निकलने वाले फाजिल कीमियाई मादे जानदारों के लिए सख्त नुकसानदेह होते हैं। जब ये फाजिल मादे नहरों, तालाबों और दरियाओं और समंदरों में गिरते हैं, तो पानी को आलूदा कर देते हैं। समंदरों में चलने वाले माल बरदार जहाज से जब कभी तेल या कीमियाई मादे बह निकलते हैं, तो समंदरी पानी को खराब कर देते हैं, जिससे समंदरी मखलूक मुतासिर होती है। जमीनी आलूदगी। जमीनी आलूदगी की सबसे बुनियादी वजह हिफ्जान सेहत के उसूलों से इनहराफ और शहरी शऊर का फुकदान है। देहात की नस्बत शहरों में जमीनी आलूदगी ज्यादा है। शहरों में आबादी ज्यादा है, जबकि निकासी आब के खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं है। इनके अलावा प्लास्टिक के थैले भी जमीनी आलूदगी में इजाफे का सबब बन रहे हैं। ये थैले पानी में हल नहीं होते, जिसकी वजह से निकासी आब के मुतअद्दिद मसाइल पैदा हो जाते हैं। जमीनी आलूदगी कई मोहलिक और मुतअद्दी बीमारियों का बायस बनती है, और इससे कई वबाई अमराज फूटने का अंदेशा रहता है। फजाई आलूदगी। फजाई आलूदगी से मुराद हवा में ऐसी मोहलिक गैसों का शामिल होना है, जो जानदारों और नबातात की जिंदगी के लिए नुकसानदेह हैं। फजाई आलूदगी का असल वजह कारखानों और सड़कों पर दौड़ते इंजनों से निकलने वाले धुएं से पैदा होने वाली मोहलिक गैसें हैं। इन गैसों से मुख्तलिफ किस्म की मोहलिक बीमारियां पैदा होती हैं। इसके अलावा एटमी तजुर्बात की कसरत के सबब फजाई आलूदगी में बराबर इजाफा हो रहा है। एटमी मवाद के तापकारी असरात फजाई माहौल को आलूदा कर रहे हैं। ट्रैफिक का शोर भी आलूदा फजा को आलूदा करके इंसानों को कई किस्म के नफसियाती अवारिज में मुब्तला करता है। आलूदगी के खात्मे के लिए तजावीज। माहिरीन ने आलूदगी के खात्मे के लिए दर्ज झेल तजावीज पेश की हैं। नंबर 1, नई आबादियां बनाते वक्त हिफ्जान सेहत के उसूलों को पेश नजर रखा जाए। नंबर 2, माहौलियात के विफाकी सूबाई और जिला यूनिटों को फाल बनाया जाए। नंबर 3, तालीम के जरिए शहरियों में शऊर उजागर किया जाए कि वो अपने माहौल को साफ सुथरा रखें। नंबर 4, आलमी सतह पर की जाने वाली कोशिशों में हर मुल्क अमली तौर पर शिरकत करे। नंबर 5, फसलों पर कीड़े मार अदवियात कम से कम छिड़की जाए, ताकि फजा आलूदा ना हो। नंबर 6, आबादी के इजाफे पर कंट्रोल किया जाए। नंबर 7, मुकामी हुकूमतों को माहौलियाती आलूदगी के लिए रुकूम और कानून साजी के इख्तियार दिए जाएं, ताकि वो बेहतर तौर तरीके से काम कर सकें। नंबर 8, आलूदगी खत्म करने के लिए सरकारी शोबे के अलावा निजी शोबे से भी रहनुमाई और माली इमदाद हासिल की जाए। नंबर 9, दरियाओं, नहरों और समंदरों के पानी को फाजिल कीमियाई मादों से बचाया जाए। नंबर 10, ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाए जाएं और पहले से ज्यादा मौजूद दरख्तों की हिफाजत की जाए। बाब चहार रूम, इंसानी हुकूक। बुनियादी इंसानी हुकूक का मफहूम। इंसान तबन मुआशरत पसंद है, इसकी गिरोही जिबिल्लत इसे अपने हम जिन्सों के साथ मिलजुल कर रहने पर मजबूर करती है। वो अपनी पैदाइश से लेकर तादा में जीस्त बेशुमार अफराद की खिदमात, तवज्जो, इमदाद और सहारों का मोहताज होता है। अपनी परवरिश, खुराक, लिबास, रिहाइश और तालीम तरबियत की जरूरियात ही के लिए भी वो इज्तमाही जिंदगी बसर करने पर मजबूर है। ये इज्तमाही जिंदगी इसके गिर्द ताल्लुकात का एक वसी ताना बाना तैयार करती है। खानदान, बिरादरी, महल्ले, शहर, मुल्क और बहसियत मजमू पूरी नौ इंसानी तक फैले हुए ताल्लुकात के लिए छोटे बड़े ये दायरे इसके हुकूक व फराइज के का तायुन करते हैं। माँ बाप, बेटे, शागिर्द, उस्ताद, मालिक, मुलाजिम, ताजिर, खरीदार, शहरी और हुक्मरानी की बेशुमार मुख्तलिफ हैसियतों में इस पर कुछ फराइज आयद होते हैं और इन फराइज के मुकाबले में वो कुछ मुतय्यन हुकूक का मुस्तहक करार पाता है। इन हुकूक में बाज की हैसियत महज इखलाकी होती है, मसलन बड़ों का हक, अदब, बच्चों का हक, शफकत, जरूरतमंद का हक, इमदाद और मेहमान का हक, तवाज़ो वगैरह। ये ऐसे हुकूक हैं जिनका ताल्लुक किसी मफाद से होता है और मुल्क का कानून इस मफाद को तस्लीम करके इसे अदलिया के जरिए काबिले वसूल बना देता है। ये हुकूक कानूनी हुकूक या मुस्बित हुकूक कहलाते हैं। फर्द के हुकूक का एक और दायरा रियासत से ताल्लुक का है। इस दायरे में एक वसी उल इख्तियार और कसी उल वसाइल रियासत के मुकाबले में फर्द को हुकूक दिए जाते हैं। इन्हें बुनियादी हुकूक कहते हैं। इन हुकूक के लिए बुनियादी इंसानी हुकूक और इंसान के पैदाइशी हुकूक की इस्तेलाह भी इस्तेमाल की जाती है। इन हुकूक की जमानत मुल्क के आम कानून के बजाय सबसे बालातर कानून दस्तूर में दी जाती है। इन्हें बुनियादी हुकूक इसलिए कहा जाता है कि रियासत का कोई भी बाजू, वह इंतजामी हो या कानून साज, इनकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। ये हुकूक फर्द को किसी रियासत का शहरी होने की हैसियत से हासिल नहीं बल्कि आलमगीर इंसानी बिरादरी का रुकन होने की हैसियत से हासिल होते हैं। ये रंग, इलाके, जबान और दूसरे इख्तियारात से मावरा हैं और इंसान को महज इंसान होने की बिना पर हासिल होते हैं। इंसानी हुकूक की तारीफ। डब्ल्यू फ्रेडमैन का कहना है कि एक शहरी के मुतायन हुकूक पर मबनी माशरे का तसव्वुर जदीद तसव्वुर है जो अव्वलन कुरूने वुस्ता के मशरकी माशरती निज़ाम के खिलाफ और सानियन 17वीं और 18वीं सदी की जदीद रियासत की आमराना हुकूमत के खिलाफ रद्द अमल से उभरा है। गाइस एज बेजू फॉर बुनियादी हुकूक की तारीफ इन अल्फाज में करते हैं। इंसान या बुनियादी हुकूक जदीद नाम है। इन हुकूक का बुनियादी रवायती तौर पर फितरी हुकूक कहा जाता है और इनकी तारीफ यूं हो सकती है कि जो अखलाकी हुकूक हर इंसान को हर जगह और हम वक्त इस बुनियाद पर हासिल रहते हैं कि दूसरी मखलूकात के मुकाबले में इस एतबार से मुमताज है कि वो जी शऊर और जी इखलाक है। इंसाफ को बुरी तरह पामाल किए बगैर कोई भी शख्स इन हुकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। इंसानी हुकूक दूसरे अल्फाज में वो बुनियादी और फितरी हुकूक हैं जो किसी भी शख्स को हर जगह और हम वक्त इस बुनियाद पर हासिल रहते हैं कि वो दूसरी मखलूकात से जी शऊर और साहिब अकल है। वो इंसान के वक़ार को मनवाते और कानून और इंतजामी कार्रवाइयों के लिए रहनुमा उसूल मुहैया करते हैं। ये हुकूक इंसानों को जुल्म और जबर से तहफ़ फराहम करते हैं। इनके कायम करदा हदूद जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता उसे कानूनी, इंतजामी और अदालती हुकाम के इम्तियाजी सलूक से बचाती हैं क्योंकि इन हुकूक के सिलसिले में कानून के लिए वाज़ह ताल्लुकात मुतय्यन कर दी गई हैं। बुनियादी हुकूक एक ऐसे इदारे को वजूद में लाते हैं जो दूसरे तमाम अफराद और हुक्मरानों के मुकाबले में इन हुकूक के निफाज की जमानत मुहैया करता है, यानी अदलिया। इस्लाम का तसव्वुर हुकूक। खुतबा हज्जतुल विदा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 632 ईस्वी को इरशाद फरमाया था वो दुनिया का पहला इंसानी हुकूक का आलमी मंशूर कहलाने का हकदार है। अगर इसकी तमाम तर दफात का जायजा लिया जाए तो ये इस कदर जामे है कि इन पर अमल दरामद करके बनी नौ इंसान की इस्लाह व फलाह और हुकूक व फराइज के हर पहलू की अदायगी में बड़ी मदद मिल सकती है क्योंकि इसमें इंसानी फलाह व बहबूद के तमाम इकदाम का जिक्र किया गया है जिनका इतलाक इस वक्त भी इंतहाई जरूरी है और तकयामत दुनिया इंसानियत इनसे मुस्तफीद होती रहेगी। इस एतबार से इस खुतबे की अहमियत और हैसियत हतमी, अब्दी और मंशूर हयात की सी है। तारीखी एतबार से देखा जाए तो इस्लाम में बुनियादी हुकूक का तस्वुर उतना ही कदीम है जितना इंसान का वजूद। इंसान के खालिक व मालिक ने जिस तरह उसकी तबई जिंदगी के लिए हवा, पानी, खुराक, रोशनी और दूसरे बेशुमार असबाब फराहम किए हैं, इस तरह उसे माशरती जिंदगी बसर करने के लिए एक जाब्ता हयात भी आगाज जिंदगी के साथ ही अदा कर दिया है। कुरान इस हकीकत की वाज़ह शहादत मुहैया करता है कि इंसान को इस दुनिया में भेजने और मनसब खिलाफत पर फाइज करने से पहले इसे हुकूक व फराइज भी सिखा दिए थे और असबाब जिंदगी की फरहमी के साथ ही आदाब जिंदगी भी सिखा दिए थे। इस दुनिया में आने वाले अव्वलीन इंसान ने अपनी जिंदगी का आगाज जहल की तारीकी में नहीं बल्कि इल्म की रोशनी में किया था। वालमु आदमुल अस्मा कुल्लहा, तर्जुमा, और अल्लाह ने आदम को सारी चीजों के नाम सिखाए। इससे पता चलता है कि ये इल्म अधूरा नहीं, कामिल था। इंसान को इस दुनिया में जिन चीजों से वास्ता पड़ता है, उन सब के नाम उसे सिखा दिए गए थे। नाम सिखाने का मतलब ये नहीं कि महज अशिया को गिनवा दिया जाए, बल्कि इनके आसार व खवास, नाफे और मुजिर पहलू, उनके तरीके और इनके साथ इंसान के ताल्लुक की नौयत को पूरी तरह वाजे कर दिया गया। जिंदगी और जिंदगी के इर्तका के साथ साथ इंसान अपने लिए बुनियादी इल्म और तहकीक व तजस्सुस की जिबिल्लत के जरिए इस इल्म अल अशिया का दायरा वसी करता गया, और ये सिलसिला हनूज जारी है। हजरत आदम की तख्लीक ही इंसानी जिंदगी की तकमील के लिए की गई थी, जिसमें अल्लाह और बंदे के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए हुकूक व फराइज का जाब्ता कायम किया गया, जो इंसानी जिंदगी के मुख्तलिफ इरतकाई मराहिल में वक्त के साथ मसाइल और तकाजों के मुताबिक थी। तशरीहात, तौजीहात और इजाफी अहकाम के साथ हजरत आदम से लेकर जरिया इंसानियत को अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए मुसलसल मिलता रहा। इंसानी ताल्लुकात के दायरे जो जो फैलते गए, इनको मुंजबित करने वाले अहकाम भी नाजिल होते रहे, ता आके आखिर उस जमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर इंसानियत की तालीम और तरबियत का ये सिलसिला मुकम्मल हो गया। कुरान की पेश करदा ये तारीख इंसानी हकूक इस अमर का वाज़ह सबूत मुहैया करती है कि इस्लाम में बुनियादी हकूक का तसव्वुर अवलीन इंसान की पैदाइश के दिन से मौजूद है। खुदा के कानून और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत ने एक फर्द के लिए जो हकूक मुकर्रर कर दिए हैं, वो जुजो दस्तूर होने, रियासत के इख्तियार कानून साजी से मावरा होने और अदालत के जरिए काबिल हुसूल होने के बिना पर बिला इस्तिस्ना सब के सब बुनियादी हकूक हैं। इन हकूक में सिर्फ तहफ्फुज़ जान, तहफ्फुज़ इज्जत, तहफ्फुज़ मिल्कियत, हुसूल इंसाफ, मसावात, आज़ादी इजहार राय और आज़ादी अकीदा जैसे हकूक ही शामिल नहीं, बल्कि एक नौजायदा बच्चे की मुद्दत रजात से लेकर एक औरत के हक महर तक वो तमाम हकूक शामिल हैं जो खुदा और उसके रसूल ने मुकर्रर कर दिए हैं और जिनमें अब किसी को रद्द बदल का इख्तियार नहीं। कुरान ने इंसान के इख्तियार कानून साजी पर आयद की जाने वाली हदूद के लिए हदूदुल्लाह की इस्तेलाह इस्तेमाल की है, यानी अल्लाह के कायम करदा हदूद। ये हदूद फर्द और रियासत दोनों पर यकसा आयद होती है। अल्लाह ने जिन चीजों को हलाल ठहरा कर इंसान को इसका हक इस्तफादा अदा कर दिया है, अब ना कोई फर्द हराम ठहरा सकता है और ना इस्लामी रियासत या पूरी कौम मिलकर इसे हराम करार कर दे सकती है। हत्ता कि कोई फर्द अपनी जात के लिए भी इसे हराम करार देने का इख्तियार नहीं रखता। इन हुदूद की पाबंदी के सिलसिले में कुरान की यह हिदायत मुलाहिजा हो। सूरह बकरा में रोजे से मुतालिक अहकाम देने के बाद इरशाद होता है, ये अल्लाह की बांधी हुई हदें हैं, इनके करीब ना फटकना। सूरह अलमायदा में फरमाया, जो लोग अल्लाह के नाजिल करदा कानून के मुताबिक फैसला ना करें, वही काफिर हैं, वही जालिम, वही फासिक हैं। सूरह अल आराफ में इरशाद होता है, जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से उतारा गया है, उसकी पैरवी करो और उसको छोड़कर दूसरे कारसाजों की पैरवी ना करो। अल्लाह ताला ने आम लोगों ही के इख्तियार कानून साजी पर पाबंदियां आयद नहीं की, बल्कि अपने नबी को भी ये इख्तियार नहीं दिया कि जिस मामले में खुदा का हुक्म मौजूद हो, वो अपनी मर्जी से इसमें कोई रद्दो बदल कर सके। बुनियादी हुकूक और कानूनी हुकूक में आखिर इसके सिवा और क्या फर्क है कि बुनियादी हुकूक नाकाबिले तरमीम और तनसीख हैं, ये रियासत के आम इख्तियार कानून साजी से मावरा हैं, इन्हें खुद दस्तूर में दिए गए गैर मामूली तरीक़े कार के सिवा और किसी तरीके से महदूद या मुअत्तल नहीं किया जा सकता। ये रियासत के इख्तियार कानून साजी पर पाबंदियाँ आयद करते हैं, इन्हें अदलिया के जरिए हासिल किया जा सकता है और इसकी मदद से इंतजामिया को जुल्म सितम से बाज रखा जा सकता है। इसके बरक्स कानूनी हुकूक आम कानून साजी के दायरे में आते हैं और रियासत जब चाहे अपने अख्तियारात कानून साजी के जरिए से इनमें तरमीम और तनसीख और कमी बेशी कर सकती है। इंसानी हुकूक की समझ हमें इस वाक़े से होती है कि एक शख्स ने अपने वालदैन के खिलाफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर दावा किया कि मेरा बाप मेरा माल खा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू और तेरा माल दोनों तेरे बाप के हैं। फिर उसके बाप को हुक्म दिया कि तुम उसके माल से फायदा उठाओ और अगर ये इनकार करे तो मुझे इत्तला दो, मैं इसके मुकाबले में तुम्हारी मदद करूंगा। इस तरह एक शख्स ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप मुझसे मेरा माल मांगता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे दे दो। उसने कहा, वो चाहता है कि मैं उससे दस्तबरदार हो जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो तुम उसके लिए दस्तबरदार हो जाओ। रावी कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को नसीहत करते हुए फरमाया कि अपने माँ बाप की नाफरमानी मत करो, और अगर वो तुमसे ये तकाजा करें कि तुम्हारे लिए इस दुनिया से निकल जाओ, तुम हमारे लिए इस दुनिया से निकल जाओ तो उनके लिए इससे भी निकल जाओ। खुदा के हुक्म और अदालत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फैसले की रोशनी में फुकहाए वालदैन के हुकूक और इख्तियारात का बिल्तफसील तायुन किया है, जो इस अमर का सबूत है कि यह महज इखलाक सिफारिश नहीं बल्कि बुनियादी हक है। कोई भी हुकूमत अपने इख्तियारात और कानून साजी के जरिए इनमें तरमीम और तनसीख और कमी बेशी नहीं कर सकती। मगरिब का तसव्वुर हुकूक। जब मगरिब के तसव्वुर हुकूक का जायजा लिया जाए तो ये बात सामने आती है कि यूं तो अहले मगरिब नौए इंसानी के लिए बुनियादी हुकूक की अलमबरदारी का दावा करते हैं, लेकिन इनका तर्ज अमल इसके बरक्स है। इनका तसव्वुर हुकूक इनके नजरिया कौमियत और नस्ली इम्तियाज पर मबनी है। वो अपनी कौम या सफेद फाम नस्ल के लिए इन जिन बुनियादी हुकूक की जमानत चाहते हैं, वो दूसरी कौमों और नस्लों को उनका मुस्तहिक नहीं समझते। अरस्तू के नजदीक जिंदगी का मतलब महज जिंदा रहना नहीं बल्कि बेहतर जिंदगी बसर करना है। एक बेहतर जिंदगी की नशोनुमा के लिए कुछ खास हालात और शराइत जरूरी हैं। ऐसे हालात और शराइत जिनका फर्द मुतालबा करता है हुकूक कहलाते हैं। मैग्ना कार्टा एक ऐसी दस्तावेज है जिसने पहली मरतबा इंग्लिस्तान के बादशाह को कानून के ताबे किया। इस कानून के बाजाबता मंजूरी बरतानिया के बादशाह जॉन ने दी। उसने एक ऐसा कानून तैयार करने और नाफिज करने का हुक्म दिया जिसकी पाबंदी बादशाह समेत तमाम रियासती अहदेदारों पर लाजिम हो और जिसमें दिए गए हुकूक और आज़ादियाँ तमाम शहरियों और मफतूहा कौमों को हासिल हों। ऐलान आज़ादी 1776। 23 अगस्त 1775 में बरतानिया के बादशाह जॉर्ज सोम ने एक फरमान के जरिए अमरीकी बाशिंदों को चंद एक वाकयात की बिना पर बागी करार दे दिया और खबरदार किया कि बरतानिया के खिलाफ रेशा दवानियाँ करने वालों को गद्दारी की सजा दी जाएगी। अमरीकी बाशिंदों ने ऐलान आज़ादी तैयार करने के लिए एक 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी। इस कमेटी में वर्जीनिया का बाशिंदा थॉमस जेफरसन बुनियादी किरदार अदा कर रहा था, जो कि कानूनदान था। उसने ऐलान आज़ादी के मुसवदे में रोशन ख्याल, इंसान दोस्त और रफाए आमा पर मबनी इकदार ऐसी महारात से समोदी कि कांग्रेस ने चंद मामूली तरामीम के बाद 4 जुलाई 1776 को ऐलान आज़ादी मंजूर कर लिया। इस ऐलान आज़ादी को इंसानी हकूक के कीमती तरीन दस्तावेज में शुमार किया जाता है। फ्रांस और इंसानी हकूक। फ्रांस के मंशूर इंसानी को जब 1791 के आईन में शामिल किया गया तो साथ ही ये सराहत भी कर दी गई कि अगरचा कॉलोनिया और एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में फ्रांसीसी मकबूजात सल्तनत फ्रांस का ही एक हिस्सा हैं, लेकिन इस आईन का इतलाक उन पर नहीं होगा। इससे साफ जाहिर हो जाता है कि जिस मंशूर को मंशूर इंसानी हकूक कहा जा रहा है वो दरअसल फ्रांसीसी अवाम का मंशूर हकूक है, किसी और कौम को बल्कि खुद फ्रांसीसी मकबूजात में रहने वाले गैर फ्रांसीसी अवाम को इन हकूक का मुतालबा करने वाले लोगों के साथ जिस दरिंदगी और बर्बरियत का मुजाहरा किया वो अहद जदीद की तारीख का एक सियाह तरीन बाब है। बरतानिया और इंसानी हकूक। बरतानिया का हाल भी फ्रांस जैसा है। इसके गैर तहरीरी दस्तूर में बरतानवी शहरियों को जो हकूक हासिल हैं वो अंग्रेज अकाओं ने अपनी नौ आबादियात में खुद अपने वजा करदा कवानीन में कभी शामिल नहीं होने दिए। उनका मैकना कार्टा, उनका कानून हब्स वेजा और उनका कानून हकूक बस उन्हीं के लिए थे। इन दस्तावेज के जरिए मिलने वाले हकूक सिर्फ बरतानिया के शहरियों तक महदूद थे। किसी और कौम ने अगर खुद बरतानवी हुक्मरानों ने इन हकूक का मुतालबा किया तो उसे बागी और गद्दार करार देकर जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाया गया। आज भी जनूबी अफ्रीका में सियाह फार्म बाशिंदों और शुमाली आयरलैंड में महकूम सफेद फार्म बाशिंदों के साथ जो कुछ हो रहा है वो इंसानी हकूक के बारे में अंग्रेजों के दोगलेपन का मुंह बोलता सबूत है। 30 नवंबर 1973 को अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने जब नस्ली इम्तियाज को काबिले ताज़ीर जुर्म कर बनाने के लिए एक करारदाद मंजूर की तो उसके चार मुखालफीन में अमरीका, जनूबी अफ्रीका और पुर्तगाल के साथ साथ बरतानिया भी शामिल था। अमरीका और इंसानी हकूक। अमरीका का हाल बरतानिया और फ्रांस से मुख्तलिफ नहीं। अमरीका के सफेद फार्म नौ आबादकारों ने इस बर आजम के असल बाशिंदों रेड इंडियंस की तो नस्ल ही सफाई हस्ती से मिटा दी। अपनी नई दुनिया की तामीर और तरक्की के लिए उन्होंने बर आजम अफ्रीका में सियाह फार्म बाशिंदों को जानवरों की तरह पकड़ पकड़ कर अपना गुलाम बनाया और जहाजों में लाद लाद कर अमरीका रवाना किया। इन गुलामों को बाकायदा खरीदा और बेचा जाता था। अमरीका के जिस साहिल से उन्हें जहाजों में लादा जाता था उसका नाम ही साहिल गुलामा स्लेव कोस्ट पड़ गया। इन दरामद शुदा गुलामों की जो नस्ल बाकी रह गई थी वो आज तक मसावी हकूक हासिल न कर सकी। उसने जब कभी अमरीकी दस्तूर में दिए गए इंसानी हकूक के हवाले से अपने लिए इन हकूक के निफाज का मुतालबा किया तो इसे नहायत बेरहमी से कुचल दिया गया। इस सूरत हाल पर रॉबर्ट डेवी का ये भरपूर तंज मुलाहिजा हो। 5 लाख गुलामों और हजारों दरामदशुदा सफेद फार्म खिदमतगारों की कॉलोनी में बैठकर थॉमस जेफरसन ने, जो खुद भी इन गुलामों के एक दौलतमंद आका थे, किस तरह से अमेरिका के ऐलान आजादी के यादगार अल्फाज रकम फरमाए हैं। ये सफा नंबर 194 है। पार्ट नंबर 17 यहाँ मुकम्मल होता है।